कोषाध्यक्ष जिम चामर्स ने 2026 का बजट पेश कर दिया है। इसे उन्होंने सुधारों का एक कठिन रास्ता बताया है। इस बजट के केंद्र में आवास से जुड़े टैक्स बदलाव और नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम यानी NDIS में सुधार के जरिए $35 अरब की बचत शामिल है। नमस्कार, मैं हूं वृषाली जैन और अब फेडरल बजट 2026 पर ला रही हूं वो अंश जहां चर्चा होगी कैसे लेबर सरकार इस बजट को नियंत्रित खर्च वाले बजट के रूप में पेश करना चाहती है। बजट से पहले अर्थशास्त्रियों और रिजर्व बैंक की गवर्नर मिशेल बुलॉक ने चेतावनी दी थी कि अत्यधिक खर्च से महंगाई बढ़ सकती है और ब्याज दरों में और बढ़ोतरी का खतरा पैदा हो सकता है। कोषाध्यक्ष जिम चामर्स अपने 5वें बजट को पेश करने की तैयारी के समय से संकेत दे रहे थे कि सुधारों की डगर कठिन ही होगी।
This budget makes a number of difficult decisions in the near term and in the longer term to get our budget into better nick, to reform our tax system and to deal with some of these issues which have been left unattended for too long.
वित्त मंत्री कैटी गैलेगर ने भी चैनल 7 के कार्यक्रम सनराइज पर इसी तरह का संदेश दिया था।
You know, people expect governments to make the right decisions for the right time. Governments also have to make sure we're dealing with all of these really difficult issues. We can't put our head in the sand.
अब बजट पेश किया जा चुका है तो हमें साफ तौर पर पता चल गया है कि ये सुधार कैसे दिखेंगे। कोषाध्यक्ष जिम चामर्स ने संसद से कहा है कि मध्य पूर्व में जारी युद्ध कीमतों को बढ़ा रहा है, आर्थिक विकास को धीमा कर रहा है और ऑस्ट्रेलियाई लोगों पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है।
We were already dealing with price pressures in our economy, but Treasury is now forecasting inflation to peak around 5% in the middle of the year because of the conflict. For the same reasons, it's expecting growth to come in 0.5 percentage point lower next financial year to be 1.75% overall.
उन्होंने कहा कि इसीलिए ये बजट ऑस्ट्रेलिया को वैश्विक तेल संकट से बाहर निकालने और ऐसी अर्थव्यवस्था बनाने पर केंद्रित है जो ज्यादा लोगों के लिए काम करे।
The core of this budget is an economic strategy with 5 main parts. Getting through the global oil shock and building resilience. Taking the pressure off people where we can. Making the economy more productive to lift living standards over time. Reforming the tax system for workers, businesses and future generations, including a new tax cut for every working Australian taxpayer.
Yeah.
And making the budget stronger, more sustainable and helping to take the pressure off inflation by saving more than we spend.
युद्ध के असर से निपटने में ऑस्ट्रेलियाई लोगों की मदद करने की योजना के तहत ईंधन सुरक्षा पैकेज भी शामिल किया गया है, जिसकी घोषणा पहले ही प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने की थी।
The strengthening Australia's fuel resilience package will deliver more fuel for drivers and industry, more fertilizer for farmers, and more fuel security for our economy. Its centerpiece is a $10 billion investment in immediate fuel supplies and a permanent Australian fuel security reserve to get the fuels and fertilizer that we need.
ऑस्ट्रेलियाई लोगों को जीवन यापन की बढ़ती लागत से राहत देने के लिए और अधिक टैक्स कटौतियों की घोषणा की गई है।
This government cut taxes 2 years ago. We're cutting them again this year and next year too. We will put more money into the pockets of 13.3 million workers with a new $250 working Australians tax offset. Averaged out over the year, our 3 tax cuts, our instant deduction and the new offset are the equivalent of up to $54 back in the average earner's pocket each week.
और जैसा कि वादा किया गया था, कई हफ्तों की अटकलों के बाद कोषाध्यक्ष जिम चामर्स ने टैक्स व्यवस्था में बदलावों की पुष्टि की है। उनका कहना है कि इससे आवास व्यवस्था सभी के लिए अधिक निष्पक्ष बन सकेगी।
House prices have decoupled from incomes. Since 1999, house prices have risen over 400%, more than twice as fast as average incomes. Our tax changes will help about 75,000 Australians achieve the dream of home ownership. We'll limit negative gearing for residential property to new builds from July next year.
Yeah.
And we're replacing the 50% capital gains tax discount with inflation-adjusted indexation to restore the taxation of real gains. We'll also introduce a minimum 30% tax rate on capital gains from July next year and on discretionary trust from July the year after.
रक्षा, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में बड़े खर्च वाले कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई हैं।
This budget includes another $25 billion for public hospitals. We're also investing $5.9 billion to list more medicines on the pharmaceutical benefit scheme, so Australians continue to access life-changing medicines at cheaper prices.
कुछ अध्यक्ष जिम चामस का कहना है कि नया प्रोडक्टिविटी पैकेज अधिक निवेश आकर्षित करने और उसे अर्थव्यवस्था में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है ताकि अधिक लोगों के जीवन स्तर और वेतन में सुधार हो सके, साथ ही कौशल आकलन और पेशेवर लाइसेंस प्रक्रियाओं को तेज किए जाने के बाद हर साल अतिरिक्त 4,000 प्रवासी ट्रेड वर्कर्स को कार्यबल में शामिल होने की अनुमति मिल सकेगी। हालांकि अर्थशास्त्रियों और रिजर्व बैंक की गवर्नर मिशेल बुलक की चेतावनियों के बाद लेबर सरकार इस बजट को नियंत्रित खर्च वाला बजट बताने पर जोर दे रही है। उनका कहना था कि अत्यधिक खर्च महंगाई को बढ़ा सकता है और ब्याज दरों में और बढ़ोतरी का खतरा पैदा कर सकता है। कोषाध्यक्ष का कहना है कि बजट में 63.8 अरब डॉलर की बचत का प्रावधान किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम यानी NDIS के खर्च में बदलावों से आएगा।
A big part of our savings package will restore the NDIS to its original intent and secure its future so it grows in a sustainable way in line with programs like Medicare. This difficult but necessary reform will save $37.8 billion over the forward estimates.
कोषाध्यक्ष जिम चामस का ये भी कहना था कि इस वर्ष के बजट में किए गए फैसले आवश्यक हैं।
Faced with a choice between resilience or reform, this budget demonstrates that our government and our country are capable of both. We choose the hard road of reform, not the path of least resistance. By responding to the pressures that Australians confront today and fulfilling our obligations and our responsibilities to the generations to come.
SBS News से डेबोरा ग्रॉक की इस खबर को आपके लिए SBS हिंदी से प्रस्तुत किया वृषाली जैन ने।